और भी कई पंडाल खड़े हो रहे हैं, शोभा यात्राएं चल रही है, डिंडोरा पीटा जा रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव संपन्न हो रहा है, आप सभी सादर आमंत्रित हो, इनविटेशंस भी जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के भी पत्रकारों को बताया जा रहा है। कृष्णा इसका नोएडा महोत्सव मनाएगा और सारा संसार मनाएगा। 50 वर्ष पूर्व प्रभुपाद जब 1965 में जा रहे थे उस बोट में बैठ के, तो जाते जाते उस बोट में वो जब अटलांटिक महासागर पहुंची तो वहाँ जन्माष्टमी महोत्सव की तिथि आ गई। बोट में थे प्रभुपाद तो श्री प्रभुपाद बोट में ही जन्माष्टमी संपन्न किए। बोट के जो कर्मचारी है उनको इकट्ठे किए, कैप्टन पांड्या उस बोट के उनको भी बुलाया और बोट में ही अटलांटिक ओशन में ही जन्माष्टमी महोत्सव संपन्न हुआ 1965 में। इस्कॉन की पहली जन्माष्टमी थी वहाँ और अब 50 वर्ष के उपरांत संसार के 101 देशों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही है। मैं चाइना गया था, वहाँ पर भी बीजिंग में वहाँ भी जन्माष्टमी की तैयारियां लास्ट मंथ सेम मंथ दिस मंथ या अभी अगस्त ही चल रहा है ना या तो तैयारियां वहाँ भी चीन में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वाह हरी हरी। तो करती कथा गाती गाने गुड़िया तोरने। हमारे तुकारा महाराज महाराष्ट्र के संत तुकारा महाराज ने भी गाया है कि जब जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा था तो तोरण समय तोरण हाँ मराठी में तुम तोरण कहते हो क्या, जो रस्सी में अभी बांधते हैं पत्ते है आम का पत्ता फूल है इसको तोरण। तो सजावट हो रही है, गोकुल को पूरे गोकुल को सजाया था और करती कथा गाती गाने और आनंद लिया नर नारी और सभी नर नारिया आनंद हर्ष उल्लास का अनुभव कर रही थी और सभी भगवान की गुण गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। आप कभी कुछ क्षण पहले देखा, अभी कथा का समय था लेकिन आप कीर्तन करने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, कुछ वाद्य भी बज रहे थे। तो 5242 वर्ष पूर्व कैलकुलेशन करके पहले बताते हैं ना, तो उसमें थोड़ा समय जाता है, ग्रैंड टोटल कैसी हुई वो नहीं बताएंगे। तो 5242 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव संपन्न हो रहा है और ये होता ही रहेगा। ये चांद सितारे जब तक है वह कईयों ने जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स मनुष्यों के पीढ़ी एक पीढ़ी के बाद उपरांत दूसरे पीढ़ी ने सभी को मौका दे रहे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी संपन्न करने का। ये भी उद्देश्य आज हम इसका भी स्मरण करेंगे, भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो वह और जब तैयारियां हो रही है कई प्रकार की, तो हम अपना मन भी बना लेते हैं, मानसिक तैयारी, कुछ हरि कथा, कृष्ण कथा, जन्म कथा का श्रवण करके, तो हुआ हमारा मन फिर चंगा जब होगा, मन चंगा, चंगा पंजाबी लफ्ज है, हाँ पंजाबी मन चंगा, चंगा चंगी बात करते, चंगी चलता है, चंगी ऐसे कह रहा हूँ मैं, तो हुआ तो फिर जब भगवान प्रकट होंगे ही जन्माष्टमी के दिन, तो हम तैयार होंगे मेंटली, हमारा हृदय प्रांगण भी कुछ साफ सुथरा रखेंगे हम, तो फिर भगवान को धारण करने का के हम पात्र बनेंगे। भगवान ने जन्म तो लिया, तुम्हारे मन में, हमारे हृदय प्रांगण में भगवान जन्म ले, ऐसे देवकी के गर्भ से जन्म लेने के पहले भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए थे, वसुदेव के मन में प्रकट हो, मन में प्रकट हो, फिर वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में प्रकट हुए, तो वसुदेव का मन, देवकी का हृदय प्रांगण, ये उचित पवित्र स्थान, स्थल, पात्र थे, तो भगवान वहां प्रकट हुए। और फिर प्रकट हो ही गए अष्टमी के रात्रि को, भगवान किसी स्त्री पुरुष के समागम या संघ का ये प्रोडक्ट या उत्पादन नहीं है, कृष्ण ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे हमारे हमारा जन्म होता है, हमारे शरीर का जन्म होता है, तो से भगवान का तो शरीर जन्म लेता ही नहीं, भगवान का शरीर है नहीं, तो फिर वो स्त्री पुरुष के मिलन से, समागम से भगवान उत्पन्न नहीं होते जन्म। लीला में कुछ ऐसा सुनने में आता है, ऐसा कुछ हो रहा है, पुरुष है यह वसुदेव और स्त्री है देवकी, और लेकिन फिर जब जन्मे तो वे कैसे थे, वो अद्भुत बालक, तो भी पता चल सकता है कि ये जन्म कोई साधारण तो नहीं हो सकता। तो वह बालक हास रहा था, तो कोई इस संसार का कोई भी बालक हंसते हुए जन्म लिया है, बस फिनिश, तो मतलब ये जो जन्म है इस संसार का जन्म नहीं है। संसार में जैसे जन्म होते हैं वैसा जन्म ही नहीं है, और वैसे भगवान को अजन्मा कहा ही है। भगवान है कैसे, अजन्मा ही है। जिनका जन्म से कोई संबंध नहीं है तो भी हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो वह यह सब इसीलिए भी भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरी लीलाएं दिव्य है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, और मेरे जन्म को लीलाओं को जो तत्वतः जानता है, फिर भगवान के जन्म का हमें भी फल प्राप्त हुआ, हम भी लाभान्वित हुए। तब जब हम समझेंगे भगवान के जन्म और लीलाओं को तत्वतः समझेंगे, तो इस जन्म लीला का तत्व भी कहिए कुछ। जन्म के पीछे का क्या कारण रहा इत्यादि इत्यादि कई सारी बातें हैं, उसमें से कुछ बातों का पर विचार हम करना चाहते हैं। और ये होगा कुंती महारानी के प्रार्थनाओं के साथ या प्रार्थनाओं की मदद से। कोई भगवान को जानती थी तो उन जानने वालों में एक कुंती महारानी ऐसे भगवान की पार्षद आ रही परिकर। वो बद्ध जीव तो थी ही नहीं, कुंती महारानी थी, संसार की स्त्री नहीं थी। भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान अपने परिकरों के साथ प्रकट होते हैं। जैसा कहीं पर राजा आता जाता है तो राजा अकेला नहीं आता, राजा के अंगरक्षक भी आते हैं, राजा के सचिव भी आते हैं, राजा के मंत्री भी आते हैं, राजा के पुरोहित भी साथ में आते हैं, राजा के पूरा तो राजा अकेला कभी नहीं आता जाता, तो भगवान आते तो अकेले नहीं आते। या कुछ अवतारों में भगवान अकेले नहीं आते, नहीं आए, जैसे राम रूप में वे प्रकट हुए तो अकेले नहीं आए। फिर श्री कृष्ण कभी राम बन के कभी श्याम बन के, जब श्याम बन के आए तो अकेले नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो वे अकेले नहीं आए, जब नरसिंह रूप में आए तो फिर अकेले आए। ऐसे भी कई सारे अवतारों में अकेले आए। वराह भगवान ऐसे अधिकतर ऐसे अवतार अकेले भी आ जाते, अकेले आ जाते हैं तो किसी प्रसंग वश धर्मश ग्लानी रभवती, धर्म की ग्लानी होती है और अभ्युथानम अधर्मश्य, और अधर्म का उत्थान बढ़ावा चढ़ावा सर्वत्र फैल रहा है अधर्म, और धर्म का रास या ग्लानी हो रहा है। तब भगवान कहते मैं आता हूं तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो ऐसा भी कोई समय प्रसंग तो भगवान आ जाते हैं। तो कोई एक ही कोई विशेष लीला का प्रदर्शन होता है और फिर भगवान अदृश्य होते हैं, अपने लीला का समापन। इन कुछ लीलाओं में जन्म से फिर 125 वर्ष भगवान रहे, जन्म लिया और फिर बाल अवस्था, बहुगंड अवस्था, फिर किशोर अवस्था, नवयौवनम च युवावस्था, राम भी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राम रहे 11,000 वर्ष इस पृथ्वी पर, श्री कृष्ण 125 वर्ष, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष। तो ये तीन अवतार कुछ विशेष है, हजारों वर्षों तक या सैकड़ों वर्षों तक भगवान इस पृथ्वी पर रहे, अपने लीलाओं का प्रदर्शन किए। इन प्रार्थना की ओर, प्रार्थनाओं की ओर मुड़ते हैं। तो हम कह रहे थे कि कुंती महारानी सर्वज्ञ है, भगवान को जानती है, ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ज्ञानी जो ज्ञानवान जो तत्व के दृष्टा है, तत्वतः का है ना, भगवान की लीला को कैसे समझना चाहिए, तत्वतः। तो भगवान के जो परिकर है तो वे निश्चित ही तत्व को जानते, तत्वतः भगवान को जानते, वे तत्ववेत्ता होते, फिर सही गुरु हो फिर वो गुरु भी बन सकते हैं। तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में कई सारी प्रार्थनाएं स्तुतियां है, तो सर्वप्रथम स्तुति श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी की ही है। इस फिर और आगे और प्रार्थनाएं स्तुतियां जरूर है, लेकिन ये पहली है। नमस्ते पुरुषम त्वामद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। तो वैसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है तो भगवान उनके समक्ष ही खड़े हैं और वो प्रार्थना कर रही है। कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के उपरांत भगवान हस्तिनापुर में बहुत सारा समय बिताए और फिर अंततो गत्वा उनका हेडक्वार्टर, भगवान तो पांडव रहते थे हस्तिनापुर में और द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे। तो द्वारका के लिए प्रस्थान करना था तो रथ में बैठ के प्रस्थान कर ही रहे थे, इतने में कुंती महारानी उनके समक्ष आ जाती है। भगवान बैठे हैं रथ में, विराजमान है और समक्ष सामने खड़ी है कुंती महारानी, और भगवान का दर्शन करती हुई, उनको देखती हुई अपनी प्रार्थना समर्पित कर रही है। ऐसे हम भगवान के विग्रह के समक्ष हम भी अपनी प्रार्थनाएं, जैसे भगवान के समक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उनके आँखों के सामने भगवान उस जब विद्यमान थे ही, लीला संपन्न हो ही रही थी तब हस्तिनापुर में भगवान से नमस्ते पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम त्वाम अद्यम ईश्वरम, आपको मैं नमस्कार करती हूं। कैसे आप जिनको मैं नमस्कार करना चाहती हूँ, बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृष्ण वैसे कृष्ण वैसे कृष्ण। हाँ, फिर हम क्या कह रहे थे, लूट लूट ददी माखन खायो, और फिर ऐसे भगवान को, माखन चोर को भी हमारा नमस्कार। चोर को कोई नमस्कार करता है? लेकिन इस चोर को हम संसार बारंबार नमस्कार करता है, तो ये चोर भी इस संसार का नहीं है। और चोरों में अग्रगण्य चोर है उसे, छोटा मोटा नहीं, अग्रगण्य चोर शिरोमणि, तो उनको भी नमस्कार। तो हुआ, कुंती महारानी नमस्कार कर रही है। अद्यम ईश्वरम, आप आदि, ईश्वरों के भी आदि हो। आदि देवम अजम विभुम, अर्जुन ने भी कहा गीता के उपदेश के अंतर्गत। प्रकृति हे परम, और आप प्रकृति के परे हो। भगवान कैसे हैं? प्रकृति हे परम, प्रकृति प्रकृति से परे हो। तो भगवान तो इस संसार के है नहीं, इस संसार को प्रकृति कहते हैं, प्रकृति, और भगवान इस प्रकृति से परे जो अप्राकृत जगत है, अप्राकृत, तो उस जगत में भगवान नैसर्गिक, ये तो कृत्रिम है, वो नैसर्गिक जगत में भगवान रहते हैं। परस्तस्मात्तु भावो अन्य, भगवान ने कहा परस्तस्मात्तु भावो अन्य, व्यक्तो व्यक्ता सनातना। मैं जिस धाम में रहता हूँ उस धाम का नाम सनातन धाम, उस सनातन धाम में मैं रहता हूँ। तो कुंती महारानी करे प्रकृति परम, इस प्रकृति से परे है आपका, आपका धाम भी, और आप स्वयं भी, ये तो धाम की बात, आपका धाम का निवास स्थान प्रकृति से परे है, और आप स्वयं भी प्रकृति से परे हो, क्योंकि आपका जो रूप है वो भी प्राकृत नहीं है, सच्चिदानंद घन है। ये संसार के शरीर बने हैं पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंचमहाभूतों के, संसार के सभी रूप बने हैं, 84 लाख योनियां हैं फ्रॉम ए टू जेड जी तक, सारे सभी के शरीर इन पंच महाभूतों के बने हैं, लेकिन भगवान का शरीर और ही तत्व से बना है, उसको सत चित आनंद कहते हैं। तो प्रकृति से परे अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, आप हो वैसे अंतर्बहिरवस्थितम सर्वभूतानाम, सभी के आप अंदर भी हो और बाहर भी हो, और ऐसे होते हुए भी अलक्षम, उनको आप दिखते नहीं हो उनके अज्ञान के कारण, अंधेरे में भी कई सारी वस्तुएं होती है। कल रात को एक भगवान कह रहे थे शहाद्रे में, उस भगवान से हमने सुना, वो भगवान कल का तिलक अभी तक धारण करके बैठे हुए हैं, नहीं एक नाटिका में, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, भगवान ने कहा, भगवान की दवा थी, तो वो कह रहे थे एक निखिल, एक संबोधित करते हुए कि जहाँ जहाँ अंधेरा होता है, अंधेरा तब एक वहाँ कई सारी वस्तुएं तो होती है, लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन उस स्थान को प्रकाशित करो, लाइट ऑन करो या कोई मोमबत्ती टॉर्च मशाल लेके जाओ तो सब कुछ है वहां, एवरीथिंग इज देयर। तो सारा अस्तित्व तो है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिखाई देता। या फिर कोई कह जाए देयर इज नथिंग हियर, ऐसा कोई डिक्लेयर भी कर सकता है, घोषित कर सकता है। तो अज्ञान के कारण अलक्षम, भगवान दिखते नहीं, अंतर बहिरवस्थितम, लेकिन अलक्षम। इसीलिए फिर क्या होता है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य का, तिमिरंधस्य, तिमिर जो है अंधेरा जो है, तिमिरंधस्य। गुरुजन क्या करते हैं, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन, और फिर आगे प्रेमांजन, फिर आंखों की शोभा भी है उसमें, फिर दिखाई देता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। फिर वो प्रेमांजन से शोभायमान जो जिनके नेत्र है, फिर वो देखेंगे हृदय प्रांगण में भी देखेंगे। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, तो वो अचिंत्य वो अलक्ष्य भगवान को भी ज्ञानांजन प्रेमांजन की मदद से देखा जा सकता है। माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती महारानी आगे कहती है, तो भगवान दिखते नहीं, भगवान तो सर्वत्र है। यतो यतो यामी ततो न सिंहा, हम लोग कहते यतो यतो यामी, अहम यामी, मैं जहां जहां जाता हूं ततः ततः नरसिंह, यह भगवान है, नरसिंह है। लेकिन ये दर्शन, ये तो प्रेमांजन ज्ञानांजन से ही संभव है। बहिर्न सिंह हृदये न सिंह, भगवान नरसिंह कहो, राम कहो, श्री कृष्ण के कई सारे नाम, कई सारे रूप है, बहिर नरसिंह बाहर है, अंदर है। यतो यतो यामी ततो नरसिंह, या फिर हम जगन्नाथ की प्रार्थना करने वाले कहते ही है कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं, मेरे नयन नयनों का जो पथ है उस पथ पर आप रहिए प्रभु। नयनों का पथ मतलब मैं जहां जहां भी देखूं वहां वहां मुझे आप दिखे, मुझे दर्शन हो। नयनों का पथ बदलता है ना, नयनों का पथ यह है, फिर ये है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ मार्ग जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो जहां जहां मैं देखूं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं, ऐसा हो मेरे लिए अगर आप, जहां जहां देखूं। सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति, चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या, स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति। जब व्यक्ति देखता है जा रहा है कहीं, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित उच्च कोटि का भक्त वैष्णव वो कई रूप देख देख तो लेता है। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, स्थावर जंगम को देख रहा है स्थावर जंगम, लेकिन ध्यान पूर्वक उनके रूपों की ओर ध्यान नहीं देता है। कोई है, कोई है, somebody is there, है, तो उसको टालने के लिए वो रास्ते में तो थोड़ा इधर से जा सकता है, थोड़ा मुड़ के, थोड़ा डाइवर्जन लेके क्या कुछ है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्यों? क्या कहा कि सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति, उसको तो सर्वत्र इष्ट देव की, अपने अपने इष्ट देव की स्फूर्ति, इसलिए उसका और जो भी है जड़ सावर जंगम ज्यादा ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो मग्न है अपने ध्यान में है। तो सर्वत्र इष्ट देवेर स्फूर्ति, बुद्ध देव भी ऐसे ही ध्यान अवस्था में होंगे। तो फिर एक व्यक्ति आया और उन्होंने पूछा, ओ यहाँ से कुछ समय पहले स्त्री यहाँ से गुजरी, आपने आपने देखा? तो उन्होंने कहा, हाँ यस राधा गोविंद देव की, हाँ देखा तो सही, लेकिन ये नहीं पूछना कि वो स्त्री थी या पुरुष था। हाँ हाँ किसी को जाते हुए देखा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन डोंट आस्क मी वो स्त्री थी पुरुष थी। और तो लेकिन संसार में और कुछ देखा जाता है, लोग स्त्री है तो फिर देखते ही रहते हैं मुड़ मुड़ के, उसका फोटो भी खींचेंगे सब कुछ, दे विल टेक नोट, सीरियस नोट, कौन है, कैसी है, क्या है, या कैसा है, कैसा है भी हो सकता है संसार में सब। तो ये सब भाव ही अलग है, इसीलिए कहा कुंती महारानी, माया जवनी का आच्छन्नम, माया माया, जवनी का मतलब पर्दा, माया के पर्दे ने क्या आच्छन्नम आच्छादित किया है बद्ध जीव को, और भगवान ने भी स्वयं को ढक लिया है। भगवान कहते हैं गीता में, नाहम प्रकाश सर्वशा योग माया समावृतः, योग माया से मैं भी स्वयं को ढक लेता हूं। तो वह तो माया से जो लिप्त है, फिर वो अधोक्षज, तो भगवान अधोक्षज मतलब हमारे हमारे इंद्रियों के पहुंच शक्ति सामर्थ्य क्षमता के परे है भगवान का दर्शन कहो, या भगवान का स्पर्श कहो, या भगवान का एवं श्रवण कहो, भगवान अधोक्षज। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि, कहा। तो ग्राह्यम मतलब जो इंद्रिय जो दूषित है कलुषित है, अपवित्र इंद्रिया, इंद्रिय तृप्ति मनोरंजन और इंद्रिय रंजन या करते करते उनको, तो ऐसी इंद्रिया। अतः श्री कृष्ण श्री कृष्ण नामादि मतलब कृष्ण नाम रूप गुण लीला दाम न ग्राह्यम, इसको ग्रहण नहीं कर सकते, इसको देख या सूंघ नहीं सकती, नासिका सूंघ नहीं सकती। भगवान तो है और भगवान के शरीर से कितना सारा, भगवान का शरीर सुगंधित है, आगे शायद हम चर्चा करेंगे, भगवान भगवान का शरीर कैसा है? सुगंधित है, सदा के लिए सुगंधित, सौरभ। हमारा शरीर तो सदैव क्या होता है? बदबू आती है, गंदा होता है। उसके जो अलग अलग द्वार है, नव द्वार, उसे क्या क्या निकलता रहता है। हरी हरी। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, तो तुम, या वैसे कुंती महारानी एक उदाहरण दे रही है, जैसे नटो नाट्य धरो यथा। नाटक में कोई कलाकार भूमिका निभाया, फिर वही कलाकार दूसरे नाटक में दूसरी भूमिका निभाता है, फिर तीसरे में तीसरी भूमिका निभाता है, और एक दूसरे से दूसरे दूसरा तीसरी से बिल्कुल भिन्न हो जा, उसका सारा मेकअप, सारा उसका यूनिफॉर्म, कपड़े, स्टाइल, इवन हेयर स्टाइल। तो जो लोग मूवी देखते हैं तो उनको कुछ 5-10 मिनट के बाद दस देवानंद बहुत समय के बाद दस द वन। तो जैसे एक ही कलाकार तो एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, या कुछ वेशभूषा अलग पहना है, उसकी हाव भाव या हालचाल या सब कुछ परिस्थिति भी भिन्न हो सकती है। तो न लक्ष्य से समझ में नहीं आता है, कई बार वो कलाकार पहचाना नहीं जाता कि वही तो कला, ये दिस इज द वन, इज द सेम एक्टर, इज सेम एक्टर। तो ये जैसे साधारण संसार के कलाकारों का पता नहीं चलता कई बार कि वही कलाकार है। तो फिर आपके संबंध में तो फिर कहना ही क्या। आप कभी नरसिंह बन के आते हो तो फिर आप कभी वराह बनते, तो कभी आप कछुआ बन जाते हो। कितना परिवर्तन हुआ कि नहीं। ये संसार का कोई कलाकार एक्टर नहीं, इसके इसके दो पैर तो होंगे ही, उसके दो हाथ तो होंगे ही, और बहुत तो एक ही होता है। सो मैनी थिंग्स इन कॉमन, सामान्य साम्य तो रहेगा, बहुत सारी भिन्नता भी होगी, लेकिन भगवान जब अलग अलग, आप जब संभवामी युगे युगे करते हो तो कुछ पहचानने में बहुत कठिन जाते हो भगवान आप। केशव धृता नरहरि रूप केशव धृत, वराह रूप केशव धृत, राम शरीर केशव धृत। केशव ही धारण करते हैं, जो 10 अवतार है ना, 10 अवतार, वैसे अवतार तो कई है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम है, लेकिन फिर उसमें से एक 10 अवतारों की एक 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 लिस्ट है। तो उसमें कहा, जयदेव गोस्वामी ने स्तुति की है उन 10 अवतारों के, केशव धृत मतलब केशव ही तो धारण करते, केशव धृत मतलब केशव ने धारण किया हुआ, ये मीन मतलब मछली बन गए, कच्छप केशव धृत, कच्छप रूप केशव धृत, वराह रूप शूकर रूप, लाइक दैट। तो केशव तो केशव ही तो बन जाते हैं, केशव ही तो कलाकार है, और ये फिर अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो ये वैसे ही है जैसे नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कलाकार अलग अलग भूमिका अलग अलग नाटकों में अपनाता है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। तो अपना विनम्र भाव से कुंती महारानी कहता, आप तो जाने जाओगे, कौन जानेंगे आपको? ये परमहंस जो थे, परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की परमहंस। हंस, हंस की क्या खासियत है? एक प्याले में, वो प्याले में क्या करो, दूध और जल मिश्रित मिक्स करके पिलाओ तो क्या पिएगा वो? केवल दूध को पिएगा। परमहंस मतलब ट्रांसेंडेंटल, जल से ऊपर भी रहता है, पानी पंख पानी में होते लेकिन भीगते नहीं हो, वो गीले नहीं होते, सदैव वो सूखे ही रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो परमहंस, परमहंस हंस को कुछ शुद्ध पवित्र, शुद्ध तो स्वच्छ, और दूसरा फिर कौवा होता, कौवा। म्युनिसिपैलिटी का जहाँ भी कचरा पेटी होता है वहाँ वहाँ सारे कौवे मिलेंगे। हंस कहाँ मिलेंगे? वो जो मानस सरोवर है हिमालय में, मानस सरोवर है वहाँ का स्वच्छ जल जहाँ कमल के पुष्प खिलते हैं, ऐसे स्थानों पर हंस मिलेंगे। तो परमहंस मुनीनाम अमल अमल आत्मनाम, जिनके आत्मा में अब कोई मल नहीं रहा, मलहीन जिनका मन है, आत्मा है, या सर्वोपाधि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, कहते निर्मलम, जो सभी उपाधियों से मुक्त है, उपाधिया डेजिग्नेशंस शरीर के संबंधी सारे उपाधियां, तो परत्व निर्मलम, वे निर्मल होते हैं। भक्ति योग विधानार्थम, और फिर आप भक्ति योग की स्थापना करने हेतु हे प्रभु आप प्रकट होते हो। ये परमहंस, ये मुनि अमल आत्मा आत्मा, ये फिर भक्ति करेंगे, भक्ति और भक्ति की स्थापना होगी, धर्म संस्थापनार्थाय या विधानार्थम कहा, विधान भक्ति का विधान की स्थापना, भक्ति योग की स्थापना, भक्ति मार्ग की स्थापना, भक्ति धर्म की स्थापना, प्रेम धर्म की स्थापना। तो वह कथम पशे मही स्त्री, मैं तो स्त्री हूँ, एक अबला मैं कैसी जान सकती हूँ? ये तो वो परमहंस अमल आत्माए तो आपको जान सकती है, लेकिन मैं कैसी जान सकती हूँ? ऐसा अपना भाव व्यक्त कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये तो बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना आप कई बार सुने होंगे। तो प्रार्थना कुंती महारानी की प्रार्थना है, क्या कह रहे? कृष्णाय, मेरा नमस्कार कृष्ण को, तो कृष्ण तो समक्ष, उसके समक्ष ही है। कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, मतलब आप वसुदेव के पुत्र हो इसीलिए तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वासुदेव है, वसुदेव का पुत्र इसीलिए वासुदेव। एक सरल सीधी सी समझ, उनको वासुदेव वासुदेव क्यों कहते हैं, तो वसुदेव है तो फिर वासुदेव। तो वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, और देवकी नंदन हो, अब देवकी नंदन हो, और साथ ही साथ नंद गोप कुमार भी हो, तो दोनों का हो। तुम वसुदेव नंदन भी हो और नंद नंदन भी हो। गोविंदाय, आप गोविंद को जय गोविंद गोविंद गोविंद, आप गोविंद को नमस्कार, गोविंद को नमस्कार, इस पंखे को भी नमस्कार। तो गोविंदाय, गोविंदाय मतलब गो मतलब गो के कई अर्थ, गो मतलब इंद्रिया भी होती है, तो इंद्रियों को आप प्रसन्न करने वाले, इसलिए आपका एक नाम गोविंद। गो मतलब गाय है, गाय को प्रसन्न करने वाले आप, इसलिए आपका आप गोविंद हो। और पृथ्वी माता ये भी गो है, तो धरती माता को प्रसन्न करने वाले आप, तो गोविंद तो हमने कह दिया, लेकिन ये सारे भाव भी है, समझ भी है, क्यों गोविंद क्यों कहा जा रहा है। और वैसे पहले इंद्र थे, इंद्र वे जब इंद्र ने जब पूजा की, क्षमा याचना भी की, वो गोवर्धन पहाड़ भगवान उठाए और फिर इंद्र के गर्व का दमन किए भगवान, पहाड़ उठाए, कुछ बिगाड़ नहीं सके इंद्र, ए संवर्तक जाओ संवर्तक। जब महाप्रलय होता ना, महाप्रलय के समय जो बादल आते हैं स्पेशल रिजर्व रखे जाते हैं, जो नॉर्मली हर साल जो बादल आते हैं वो तो दे आर नॉर्मल, लेकिन प्रलय के समय, प्रलय प्रलय समझते, प्रलय संसार का प्रलय, सृष्टि का प्रलय, महाप्रलय के समय बहुत सारी वर्षा सारे संसार को जलमय करना होता है, तो उस वक्त जो जो बादल नियुक्त किए जाते हैं उन बादलों को संवर्तक बादल कहते हैं, संवर्तक। तो ऐसे बादलों का इंद्र ने उपयोग किया था, सारे ब्रज को और ब्रजवासियों को सब महाप्रलय सभी को डुबाना चाह रहे थे, ऐसा ऐसी इंद्र की योजना थी। तो भगवान ने पहाड़ उठाया, वर्षा करता रहा, वर्षा करते 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 वो थक गया, कुछ बिगाड़ नहीं हो रहा, सारे ब्रजवासी आराम से पहले से आदि का नॉर्मल डेली लाइफ से उनका अभी का लाइफ जो कृष्ण के साथ जब वे थे गोवर्धन के पहाड़ के नीचे 24 घंटे दे वर वेरी हैप्पी, नहीं तो हर रोज तो 2 घंटे प्रातः काल में नंद यशोदा को और सायंकाल को 2 घंटे मिलते थे, अभी इनको 24 घंटे भगवान का संग मिल रहा है। वही हाल गोपियों का भी, मध्यान्ह के समय कुछ घंटे, फिर मध्य रात्रि के समय कुछ घंटे, ऐसा अष्टकालीय लीला में समय का बंटवारा हुआ है। ये गोपियों के लिए समय, ये ग्वाल बालकों के लिए, गायों के लिए समय, ये माता पिता के लिए समय इस समय सख्य भाव की लीला होगी, सखा सख्य भाव, फिर वात्सल्य भाव या वात्सल्य रस, माधुर्य रस, वैसे तीन रस ही अधिक प्रधान है। उसमें भी माधुर्य रस का प्राधान्य है वृंदावन में, परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार, परकीय भाव। तो भगवान कुछ वात्सल्य भाव में कुछ घंटे इनको, फिर माधुरी लीला के लिए गोपियों को कुछ घंटे, लेकिन यहाँ जब गोवर्धन पहाड़ को उठाया तो हर एक को 24 घंटे, 24 24 घंटे सभी को मिल रहे थे, जो हर रोज चाहते थे। माता पिता चाहते क्यों क्यों जाना है तुमको वन में, रहो घर में रहो घर में रहो। और वही ग्वाल बालक संध्या काल होता तो दिन भर कृष्ण के साथ समय बिताते, सायंकाल को फिर कृष्ण नंद भवन लौट रहे, उनको अपने घर लौटना पड़ रहा है मित्रों को, तो सुखी नहीं रहा करते। व्हाई वी हैव टू डू दिस। तो एनीवे वे तो उन्होंने इंद्र ने फिर बातों से नहीं मान रहे थे, तो फिर लाश जब मिली, एक प्रकार से लाश मिली भगवान की, तो फिर पटरी पर आ गया और ब्रज आया और भगवान का आके अभिषेक भी किया। और अभिषेक का जल जहाँ इकट्ठा हुआ उस कुंड का नाम भी हुआ गोविंद कुंड। जब गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो एक गोविंद कुंड आता है, तो वहाँ वो गोविंद कुंड का जल स्वर्ग से ले आया था, वो ऐरावत लेके आया। गोविंदाय नमो नमः, और क्या, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। तो महारानी कुंती प्रार्थना कर, नमस्कार आपके पंकज नाभाय, आपकी नाभि कैसी है, पंकज नाभ, वो दिखती भी है पंकज, उसे पंकज वो भी कह सकते हैं, पंख से जो ज मतलब उत्पन्न होता है वही होता है कमल, कमल का नाम है पंकज, या कमल को पंकज कहते हैं, पंकज, पंख मतलब या तो उससे जो जन्म लेता है, तो वही से वैसे भगवान के नाभि से एक कमल का फूल भी, कमल उत्पन्न हुआ कि नहीं, जिसके ऊपर फिर ब्रह्मा ने जन्म लिया। तो भगवान के नाभि से वो नाल और फिर कमल पुष्प खिला। तो पंकज नाभाय, उनकी नाभि विशाल नाभि है, वाणी विशाल है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, और आपने जो माला पहनी हुई है कमल के पुष्पों की माला, उस वक्त पहने होंगे भगवान, लेकिन कई प्रकार की माला पहनते हैं, तो माला कौन सी पहनी है वो देख के आपको प्रार्थना करनी होगी। भगवान अगर कौन सी माला पहने हुए, वैजयंती माला पहने हैं, वैजयंती माला भी पहनते हैं, एक माला का नाम है वैजयंती माला, तो फिर नहीं कह सकते नमा पंकज क्या मालिने, तो कभी वनमाली भी वनमाला भी पहनते हैं, जो ग्वाल बाल है जाते जाते कहाँ से पत्ता ले लिया, कहाँ से फूल ले लिया, फटाफट उसको माला बना ली, वन की माला बढ़िया ढंग से, लेकिन प्रेम से बनाई है तो वनमाला हो गई, तो वनमाली। तो ऐसे प्रार्थना करनी होगी, किस प्रकार की माला पहनी है देखो पहले, और फिर अपनी प्रार्थना में उसका उल्लेख करो। तो जब ये माला, ये प्रार्थना कर रही कुंती महारानी, तो कैसे फूल थे उस माला में, पंकज कमल के। नमः पंकज नेत्राय, और अब आपके नेत्र भी पंकज कमल सदृश है, कमल जैसे हैं। जैसे कमल खिलता है तो आपके आंखें भी क्या होती है, खिल जाती है। क्या था मैं भूल गया, राम राम के जब विश्वामित्र आए थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए, आप उनको मेरे साथ साथ में भेजो, तो नंद महाराज, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये उन 16 वर्षीय बालक है, 16 में एक कम, मतलब 15 साल के है, 15 साल के है कहना था उनको, तो उन्होंने कहा उन 16 वर्षीय, मतलब 16 साल की उम्र भी नहीं हुई इनकी, हुई इनकी तो 15 साल के ही है, और फिर आगे का मैं भूल गया, लेकिन वो उनका वो कह रहे थे कि जैसे संध्या काल हो गई तो जैसे कमल का पुष्प मुरझा जाता है, बंद होता है, तो इनकी आंखें भी वैसी बंद होने लगती है, राजीव लोचना, ओके मेरा मेरा राम कैसा है, राजीव लोचना, मतलब कमल, राजीव मतलब कमल, तो राजीव लोचना ही क्यों कहा, तो उसका उसकी व्याख्या है, उसकी समझ है, क्यों वो पिताश्री कह रहे हैं कि संध्या काल के समय तो ये सो जाता है, आप तो कहते कि रात्रि के समय राक्षस आते हैं और ये राम और लक्ष्मण गार्ड बन के रहेंगे, धनुष बाण लेके तैयार सतर्क रहेंगे, ऑल नाइट ड्यूटी, नहीं नहीं ये 7 o'clock राजीव लोचना, उनके आगे तो बंद होने लगती है, वो सो जाते हैं, विश्राम का समय होता है, राजीव लोचना, तो जैसे कमल का पुष्प बंद होता है फिर खिलता है, तो नमः पंकज नेत्राय, और फिर नमस्ते पंकजांग रहे, और उनके चरण कमल, उनके चरण भी कैसे हैं, कमल जैसे हैं, कमल जैसे कोमल है, कमल जैसे कोमल है, ये कमल कमल भगवान के 7 अंग की तुलना कमल के साथ होती है, शरीर के 7 अलग अलग अवयव या अंग, तो कमल का एक कमल तो सुंदर होता है, जो सौंदर्य की बात है, कमल लाइक अ लोटस, ब्यूटीफुल लाइक अ लोटस, कमल जैसा सुंदर एक सौंदर्य होता है, एक वैशिष्ट्य और कमल का, और दूसरा कोमल होता है, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट कोमल होता है, और सुगंधित भी होता है, तो फिर भगवान के हाथ है या चरण कमल है, तो वे भी ऐसे ही है, एक तो सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, और बड़े सुकुमार है, कोमल है, और सुगंधित भी है, भगवान का सारा अंग सुगंधित है, इसीलिए थे तो हुआ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अति चिरम सुशार्पिता, तो आपने जैसे वो जो खल खल नायक है, खल वो बदमाश, खलेन कंसेन, बंद किया था कारागार में अचिरम बहुत समय के लिए, और शोक से ग्रस्त, चिंता से ग्रस्त थी वो देवकी, लेकिन आपने जैसे उसका उद्धार किया, उसको मुक्त किया, वसुदेव देवकी को उस कारागार से, उस चिंता और कष्ट से, तो अहम तो हमारा भी आपने वैसे ही किया। विमोचिता अहम सहात्मजा विभो हे विभो हे प्रभु, सामने बैठे हुए प्रभु को कह रही है, सह आत्मजा मेरे पुत्रों के साथ मेरी भी आपने सहायता की, मेरे पुत्रों की भी आपने सहायता की। त्वया एव नाथेन, आप ही तो हे नाथ जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे पद्मनाभ, हे पंकज, पंकज मालिने, पंकज नेत्र, अभी संबोधित किया था, ऐसे आपने क्या किया। त्वयैव नाथेन मुहुर विपदगणात्, कई सारे संकट आते रहे, आप ही तो हमारी हर समय रक्षा करते रहे कई सारे संकटों से, कई सारे। और फिर कुछ का उल्लेख करती है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, विष से विश्वान, और लाक्षाग्रह लाख घर बनाया और उसमें ओवरनाइट स्टे कराया, फिर युक्ति पूर्वक वहां से उनको निकाला गया तो रक्षा हुई। मृधे मृधे और कई कई बार युद्ध होते रहे और कई महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से हमारे मेरे पुत्रों की रक्षा की, और अभी अभी द्रोण्यस्त्र और द्रोणाचार्य का वो पुत्र अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र फेंका, और उससे भी आपने राजा परीक्षित की रक्षा की। हरे अभिरक्षिता, उन सभी की के रखवाले आप हो। तो आपने कई संकट भेजे और फिर आपने ही वैसे हमारी रक्षा की। लेकिन कुंती महारानी आगे की प्रार्थना में कहती, विपदः संतु ते शश्वत, हे प्रभु ऐसे संकट भेजते रहो। अब भगवान सामने ही मिले हैं तो कह सकते बहुत, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया प्रभु, लिस्ट सुना सकती थी, अब बहुत हो गया, अब तो थोड़ा रोकथाम कुछ बंद करो ये सब संकट। लेकिन वो कहते नहीं नहीं नहीं, विपदः संतु ते शश्वत, संकट भेजते रहो, संकट भेजते रहो, संकट भेजते रहो। बड़ी विचित्र प्रार्थना है, आप कभी ऐसी प्रार्थना करते हो संकट भेजते रहो। मेरी नौकरी चली गई, आई लॉस माय जॉब, ऐसा भी हो, फिर वैसा भी हो, फिर वैसा भी हो, वैसा भी हो, दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही है, और कई सारे लोन्स भी मैंने लिए हुए हैं, वो भी संकट है, कार लोन लेके रखा है, हाउस लोन लेके रखा है, ओवरसीज एजुकेशन लोन लेके रखा है, ये वो, और इतना सब होने के बाद भी आप कभी आ गया प्रभु नॉट इनफ, इतने से कुछ हम संतुष्ट नहीं है, थोड़ा और भेजते रहो ना, थोड़ा और थोड़ा कुछ योजना बनाओ। लेकिन कुंती महारानी कह रहे संकट भेजते रहो, बड़ी बुद्धिमान और चालाक होशियार है ये, क्यों भेजते रहो, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, जब भी संकट आएगा तो फिर संकट में तो स्मरण सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमरण सब करे, माय गॉड माय देश अब क्या होगा, माय गॉड, चलो दौड़ो राधा गोविंद मंदिर जाते हैं, ये समस्या वो समस्या, माय गॉड, तो दुख में सुमरण सब करे। तो महारानी कुंती महारानी के कोई संकट आएगा तो फिर हम आ जाएंगे आपके पास, आएंगे प्रार्थना करेंगे, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, संकट के कारण कारण बनेगा आपकी ओर आने का, फिर आपका जब दर्शन होगा बारंबार बारंबार संकट आएंगे, बारंबार हम आपके पास आते रहेंगे, तो फिर होगा क्या, अपुनर्भव दर्शनम, दर्शन का या खेल चल रहा है शब्द का, संकट आएंगे तो फिर हम आपके पास दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन इसी के साथ अपुनर्भव दर्शनम, फिर पुनः नहीं होगा, अपुनः, अपुनः मतलब पुनः नहीं, क्या भव दर्शनम, इस संसार का पुनः दर्शन नहीं होगा, मतलब पुनर्जन्म न विद्यते इत्यादि, फिर मामेति, आपके धाम में लौटेंगे हम। लेकिन वो कहती है कई लोग आते नहीं भगवान के पास, कौन कौन लोग भगवान के पास नहीं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान, ऐसे लोग जिनको गर्व है, घमंड है, इसका घमंड है, जन्म हम ऐसे घराने के, हम ऐसे घराने के, हरे को फिर घराना जो भी हो, हरे को लगता है हमारा घर, हमारा घर, जन्म हमारा, जन्म ऐश्वर्य, हम इतने धनवान, हम इतने धनवान, इवन पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, अंग्रेजी में कहा पॉपर, कि किसी के पास दमड़ी भी है तो उसका भी और गर्व हो जाता है, मेरे दमड़ी सो मच, इसके पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ दमड़ी तो है, इसके पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल, जब वो लाल बत्ती जब जलती है तो ऐसे कभी कभी खड़े हुए देखते हैं, साइकिल वाला बैठा मोटरसाइकिल वाला, फिर मारुति 800 वाला, हाँ फिर दूसरी कार वाला, फिर BMW वाला, और साइकिल वाले के बगल में तो फिर कोई पगडंडी चल भी रहा है, तो साइकिल वाला सोचता है उसके पास साइकिल भी नहीं है, आया हा बाइसिकल, लेकिन फिर इधर देखता है आई हैव ओनली, इसके पास है मोटरसाइकिल, मेरे पास केवल साइकिल ही है, फिर थोड़ा ईर्ष्या करता है, लेकिन मोटरसाइकिल बड़ा सा, इसके पास तो साइकिल, मेरे पास मोटरसाइकिल, लेकिन मेरे पास तो कार नहीं है, लाइक दिस ही चलता रहा, तो मारुति कार ओरिजिनल मॉडल वाले को ही है, तो इसके पास तो मोटरसाइकिल है, आई हैव कार, लेकिन आई डोंट हैव BMW यार, सा लाइक दिस, फिर हेलीकॉप्टर वाले भी है, तो जन्म ऐश्वर्य दो, हमारा ऐश्वर्य। श्रुत मतलब हमारी पढ़ाई, इतना लिखा पढ़ा हूं, इतना लिखा पढ़ा हूं। उसका गर्व है, उसका घमंड है, तो श्री तो लोगों अपने सौंदर्य का घमंड, सौंदर्य का घमंड। तो इसके कारण भाई जब भगवान के पास आएंगे पुकारेंगे तो ये घमंड के कारण, ऐसे घराने का मैं और ऐसे इतना लिखा पढ़ा मैं, ऐसा सौंदर्य, तो फिर मंदिर में आएगा तो फिर और भगवान की ओर देखेगा भाई, नहीं देखा, देख लिया तो कोई है ही नहीं, as if there's nobody, किसी ने देखा ही नहीं उसने उसकी तरफ, इधर देखेगा उधर देखेगा, ऐसा भी नहीं करेगा। अंदर अंदर का जो भाव है, तो कुंती महारानी कह रही है ये जो है घमंड बढ़ जाता है, इसके कारण घमंड बढ़ जाता है, हर बद्ध जीव का घमंड, कुछ न कारण, कुछ न कुछ कारण लेके वो घमंड घमंडी बनता है। और फिर जिस भाव से भगवान को पुकारना है वो भाव नहीं होगा। हम किसी को प्रसाद, जब हम हमारा दिल्ली का पुराना मंदिर ग्रेटर कैलाश में था, तो उस समय मुझे बात याद आती है, तो उन लोग प्रसाद बांट रहे थे, तो एक एक बड़ा थ्री पीस सूट पहना हुआ व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, तो हमने आमंत्रित किया, प्लीज कम टेक प्रसाद। वी जस्ट हैड और लंच एट हिल्टन होटल, हिल्टन होटल से लौट रहे हैं, किसी गरीब को दे दो। उसका भाव ये तो गरीबों के हैं, हम भिखारी थोड़े ही, हम तो मटनम चिकनम खाने वाले, आपका पत्रम पुष्पम फलम तोयम, खिचड़ी और क्या क्या खिलाते हैं। क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, कुंती महारानी ने कहा त्वाम अकिंचन गोचरम, जो अकिंचन है निष्किंचन है, जो समझते कि हम, मेरा तो कुछ भी नहीं है, वैसे सचमुच कुछ नहीं भी हो सकता है, ये सभी सब कुछ होने के उपरांत भी वो समझ तो चुका है, उसका साक्षात्कार है कि ये सब प्रभु का है, ये भगवान का है, तो अपनी अपना मालकी हक या प्रोप्राइटरशिप वो दिमाग में नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी वो निष्किंचन, किंचित कुछ भी नहीं, निष्किंचन। त्वाम निष्किंचन गोचरा, तो गो मतलब इंद्रिया, पहले जो कहा था भगवान अधोक्षजा है, इन इंद्रिय ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों से कलुषित इंद्रियों से भगवान जाने नहीं जा सकते, लेकिन वो व्यक्ति अगर निष्किंचन भाव वाला है तो गोचरः, फिर उसकी इंद्रिया जाएगी भगवान में, जाएगी भगवान को देखेगी, भगवान को सूंघेगी, भगवान को सुनेगी, भगवान को सारी सारी इंद्रिया ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रिया जब भगवान की, क्योंकि हमारी इंद्रियों के मालिक है भगवान, इसीलिए भगवान का नाम ऋषिकेश है। ऋषिक, ऋषिक मतलब इंद्रिया, इंद्रियों के स्वामी। हमारी इंद्रिया, इंद्रिया तो हमारे पास है लेकिन उनके स्वामी भगवान है। तो हमारी इंद्रिया स्वामी की सेवा में, तो फिर अकिंचन गोचर, फिर अपने इंद्रियों से ज्ञान होगा। वहाँ तो कहा कि ग्राह्यम इंद्रिय ही न ग्राह्यम, ग्रहण नहीं करेंगी इंद्रिया, लेकिन ऐसा भाव है निष्किंचन। और फिर आगे समय भी बीत रहा है, नमो किंचन वित्ताय, मेरा नमस्कार आपको हे प्रभु, आप कैसे हो। अकिंचन वित्ताय, अभी भी तो कहा कि जो अकिंचन है, निष्किंचन, समझ रहे हैं शब्द का अर्थ, निष्किंचन मतलब किंचित कुछ भी, he has nothing, या तो सचमुच है नहीं और वैसा भाव तो आसान है फिर वैसे तो साक्षात्कार होना, और लेकिन बहुत सब कुछ है और फिर लेकिन ईशावाश्रम इदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भूंजिता माग्रदः कश्य स्विद्धनम्। ईशावाश्रम भगवान स्वामी है और मैं उतना ही रखूंगा जितनी मुझे आवश्यकता है, बाकी मेरी संपत्ति का उपयोग मैं भगवान की सेवा में, भगवान के और जो पुत्र है और जो भक्त है उनकी सेवा में उसका मैं उपयोग करूंगा, मैं तो मालिक नहीं हूं। और ऐसा व्यक्ति फिर भगवान ने कहा गीता में, शांत भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो भगवान स्वामी है, सर्वलोक महेश ही वो स्वामी है, वो ईश्वर है, वो मालिक है। सुरिदम सर्वभूतानाम यज्ञात्वा शांतिर्मृच्छति, ऐसा जानने वाला शांति का अनुभव करेगा। ये तो दंड में रहती, जितनी आवश्यकता उससे अधिक जिसने कुछ रखा है संपत्ति या, तो वो सस्तेनो, शास्त्र में सस्तेन मतलब चोर, सस्तेनो वो चोर है और दंड में रहती, उसको दंड मिलना चाहिए। और कौन सा दंड, मृत्यु दंड, इसीलिए पुनरपि जननम मरणम क्यों होता है, ये दंड। सस्तेन वो चोर है, तो माखन चोर, वो माखन चोर नहीं है, माखन माखन मालिक है, माखन चोर नहीं, चोर तो हम है, चोर मंडली तो हम है, प्रॉपर्टी मालिक और है, ट्रेसपैसर्स हम लोग बन जाते हैं फिर, लायबल फॉर पनिशमेंट, लिखा रहता है ना कि प्लॉट ले लिया तो, हाँ ये प्लॉट ऐसे फलाने फलाने मालिक का है, एड्रेस फोन नंबर देखो, कोई ट्रेसपैसिंग कोई करेगा इसमें कोई, तो वह कुछ कार्रवाई की जाएगी कानूनी, को दंड भुगतना होगा। तो ऐसे ओके, तो नमो अकिंचन वित्ताय, अभी इतनी बात कह के समाप्त करना होगा, आगे की आते फिर कल के लिए छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करते, जब सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बोलते थे तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर दिया, तो फिर कथा के समापन तक अखंड था चल रही थी। तो नमः अकिंचन वित्ताय, वित्त मतलब संपत्ति, आप स्वयं उनकी संपत्ति बनते हो जो स्वयं को अकिंचन मानते हैं, निष्किंचन। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं, सारा तेरा तुझको अर्पण कहने वाले, वैसे फिर भी कहते सुख संपत्ति घर आवे, हाँ तेरा तुझको अर्पण सुख संपत्ति घर आवे, तो मेरा कुछ नहीं है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, या मानस देह गेह जो किचु मोर अर्पि लो तू आपदे नंद किचो, तुम्हारा ही है हम अर्पित करते हैं। तो ऐसे विचार वाले जो भक्त है, व्यक्ति है, तो उनके पास तो कोई और संपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी संपत्ति भगवान, आप स्वयं उनकी संपत्ति बनते हो, यू बिकम देयर प्रॉपर्टी, आप उनकी संपत्ति बनते हो। नमो अकिंचन वित्ताय, मेरा नमस्कार हे प्रभु आपको जो संपत्ति बनते हो, जिनके पास खुद का या तो है नहीं या होते हुए भी वो समझते कि नहीं नहीं ये सब प्रभु आपका है, आपके सेवा में समर्पित, तो फिर उनके लिए भगवान स्वयं ही संपत्ति बन जाते हैं। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पदये नमः, ऐसे आत्मा राम आप आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये या मुक्ति पतये नमः, मेरा नमस्कार। ओके तो यदा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
सात बजे आते हैं तो 9 बजे तक समाप्त हो सकता है, 7 बजे 7 से 9।